फिर जब दावानल समाप्त हो गया, उजाला हो गया दिन का, तो फिर कृष्ण भगवान सारे ब्रजवासियों के साथ लौटकर आ गए वापस। तो अब यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं लौटने की लीला। पहले हम चर्चा कर रहे थे वन में जाने की लीला। श्री शुक उवाच, अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञाति भीर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्य विशद व्रजन् गोकुलमण्डितम्। अथ इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कृष्ण परिवृतो ज्ञातभीर, ज्ञातभीर मतलब उनके मित्र सारे ब्रजवासी, परिवृतो उनको घेर कर, जब भी ब्रजवासी कृष्ण के साथ जाते थे कृष्ण को घेर कर ही जाते थे। जैसे कि जब राजा होता है हमेशा किन लोगों से घिरा हुआ होता है? उसके मंत्रियों से वगैरह। हाँ, आजकल सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ होता है, आजकल का जमाना अलग है। तो कृष्ण जब भी जाते थे ब्रजवासी उनके गोल एक आकार बनाकर चलते थे। तो इसी प्रकार से हमें भी कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए, जैसे कि ब्रजवासियों ने रखा था, हर समय कृष्ण को बीच में रखते हैं। इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना कहते हैं, कृष्ण को बीच में रखना। और फिर क्या कर रहे थे? अनुगीयमानो, गीयमानो, गीय मतलब गाना, गी धातु से संस्कृत में, और अनुगीयमान मतलब बार बार गाना। माम अनुस्मर युद्ध च तस्मा सर्वेशु कालेशु, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते करते मेरा स्मरण सतत करते रहो। अनुस्मर केवल स्मरण नहीं, अनुस्मर बार बार मेरा स्मरण करते रहो। तस्मात सर्वेशु कालेशु हमेशा 24 घंटे मेरा स्मरण करते रहो। उसी प्रकार से ब्रजवासी गण कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। जैसे जैसे वो लौट कर आ रहे थे वो कृष्ण की गीत गा रहे थे, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि एक बार गीत गा लिया फिर खत्म हो गया, फिर और प्रजल्प शुरू हो गया, संसारी बात शुरू हो गई, नहीं। अनुगीयमान बार बार लगातार हमेशा उनकी कथा ऐसे चालू रहती थी। और ब्रज की खूबी ये थी, पुराने काल में हर जगह हुआ करता था, जैसे राजाओं के लिए सूत मागद वंदीगण हुआ करते थे, जो राजाओं के पराक्रमों की गाथा गाया करते थे, नाना प्रकार की कविताओं में और संगीतमय ढंग से गाया करते थे। तो उसी प्रकार से ब्रज में नाना वर्णों के वर्गों के लोग रहते थे, उनमें से कवि भी रहते थे। और जब भी ग्वाल बाल या ब्रजवासी वन से लौट कर आते थे और घोषणा करते थे, रिपोर्ट देते थे, आज के दिन में क्या हुआ, भगवान ने ये लीला की, वो लीला की, इस असुर को मारा, ये दावानल को पी गए इत्यादि, तो ये जो कवि हुआ करते थे ये लोग इनको सबको अच्छी तरह से सुन लेते थे और उनकी कविता बनाते थे। जैसे अखबार में पत्रकार रिपोर्टर रहते हैं, रिपोर्टर क्या करते हैं? अपना रिपोर्ट फाइल करते हैं, बराबर है? यहाँ पे हमारे बीच पत्रकार भी है, भक्त पत्रकार, तो रिपोर्ट फाइल करते हैं पत्रकार। फिर वहां जो संपादक होते हैं उसको ठीक से देखते हैं क्या ठीक है नहीं है, फिर उसको जोड़ मोड़ के फिर अखबार में छाप देते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट आते थे वृंदावन में, फिर उसके आधार पर कवि जो है सुंदर कविता बनाते थे और फिर सारे ब्रजवासी जो है उन कविताओं को गाते थे बहुत मधुर एक संगीत के रूप में। तो इस तरह से जब लौट भी रहे थे तो ब्रजवासी कृष्ण कीर्तन, कृष्ण गाथा गाते आ रहे थे। न्यविषद व्रजम गोकुल मंडितम, फिर प्रवेश किया उन्होंने व्रज में, गोकुल मंडितम, व्रज मतलब व्रज भूमि, वृंदावन धाम। मंडितम इसका आभूषण सुशोभित था, किससे? गोकुल, गौओं से, गौशालाओं से। मतलब देखिए वृंदावन के आभूषण क्या थे? गाय और गौशालाएं, कितनी सुंदर बात है ये। आजकल के शहरों का आभूषण क्या है? प्रदूषण, बड़े बड़े गाड़ियां, बूम 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 आवाज, हॉर्न की आवाज, इंजन की आवाज, यह रात भर सोना मुश्किल हो, रेलगाड़ी की आवाज भू, इतने राक्षस भीषण राक्षस की तरह आवाज करते हैं, क्लास जब होती है क्लास भी सुनने में नहीं आता, ऐसी आवाज करते हैं। तो ये है शरीर के आभूषण, बड़े बड़े इमारत जो गिर जाते हैं जिसमें लोग प्लेन घुसा सकते हैं, ये है सब शहरों के आभूषण। कितने खतरनाक हैं शहरों के आभूषण। अब देखिए छोटे छोटे गांव हुए होते कौन आके एरोप्लेन उसमें डाल सकता, और डालता भी तो क्या नुकसान होता, और वैसे एरोप्लेन होते भी नहीं। तो ये शहरों के आभूषण। लेकिन वृंदावन का आभूषण क्या था? व्रज गोकुल मंडितम, केवल सुंदर गौशालाओं से गायों से ये सुशोभित था। और ब्रजवासियों का की परिभाषा मतलब उनका वर्णन कैसे दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, मुदित आत्मभि, मुदित मुदित मतलब आनंदित, जो भी भक्ति करता है आनंदित होता है। सही बात है ना, आप इसके साक्षी है ना, आप इसके क्या कहते हैं प्रमाण है, देख सकते हैं कितने सब खुश चेहरे दिखाई लग रहे हैं, ये भक्ति के लक्षण है। अगर किसी को सुंदर बनना है तो भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे हमेशा, जो पत्रकार उनसे मिलने आते थे आश्चर्यचकित हो जाते थे और कहते थे आपके भक्त इनके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतना तेज है इनके शरीर पे चेहरे पे, ऐसे क्यों? बोले क्योंकि ये भक्ति कर रहे हैं इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं, आप लोग भक्ति नहीं करते इसलिए आपका चेहरा हमेशा छोटा रहता है, उदास रहता है, हमेशा चिंतित रहते हैं। और ये भी शहरों का एक आभूषण है। अब बम्बई जैसे शहर में जाएं, हम जब भी जाते हैं रेलगाड़ी से जाते आते हैं तो वहां लोकल प्लेटफॉर्म में देखते लोगों के चेहरे, एक से छोटे 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 चेहरे सबके, ये चिंता से भूए बिल्कुल, क्या सोच में है, चिंतित सब जगह है। लेकिन गांव में अभी भी आराम से लोग बैठे हैं, कोई जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं। कल माधव प्रभु बता रहे थे, हम कल गौशाला देखने गए थे, गायों को अपने मिलने गए थे, दर्शन करने गए उनके, तो वो बता रहे थे कि गांव में शारीरिक कष्ट ज्यादा होता है, इतनी सुविधाएं नहीं होती, लेकिन मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है। शहरों में हमने इस तकनीकी ज्ञान के आधार पे बहुत सारी शारीरिक सुविधाएं बना ली हैं अपने लिए, बहुत सारी, एक बटन दबाओ ये हो जाता है, बटन स्विच चालू करो ये हो जाता है, बस सब कुछ अपना आसानी से हो जाता है, शारीरिक कष्ट कम, लेकिन मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा, मानसिक तनाव। तो लोग ये नहीं जानते कि वहां सरल जीवन में कितना आनंद है। तो ये है वृंदावन की परिभाषा इस श्लोक में। किसी भी समाज को अगर वृंदावन बनाना है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमें उत्तर प्रदेश जाना है, दिल्ली में रेलगाड़ी लेकर जाना है, कहीं भी किसी भी स्थान को वृंदावन बनाया जा सकता है इस श्लोक के अनुसार। यहां इस श्लोक में जो हो रहा है हमें वो करना चाहिए, फिर वो धाम वृंदावन हो जाएगा। तो यहां क्या क्या होना है? पहली बात, कृष्ण को केंद्र में रखना है जैसे कि ब्रजवासियों ने रखा। दूसरी बात, अनुगीयमान है, कृष्ण कथा हमेशा करनी चाहिए, कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा करते रहना चाहिए। तीसरी बात, व्रज गोकुल मंडितम, अपने आभूषण क्या होने चाहिए? गाय होने चाहिए, गायों का दूध पीना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, और मुदित आत्म भी ही, फिर सब खुश रहेंगे। कितना सरल जीवन, आनंद का जीवन। और फिर इस प्रकार से ब्रज में कैसे कृष्ण ने समय बिताया आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। व्रजे विक्रीडतो रेवम गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नामर्तुर अभवन नाति प्रेयान शरीरिणाम। व्रजे विक्रीडतोर एवं, क्रीडा खेल, एवं इस तरह से व्रज में कृष्ण भगवान और बलराम ने विक्रीडतः विशेष विशेष क्रीडाएं किए, खेल किए, लीलाएं किए उन्होंने। गोपाल छद्म मायया, भगवान ने लीला किए लेकिन किस रूप में, किस वेश में? गोपाल छद्म, छद्म मतलब एक प्रकार का आवरण, एक डिस्गाइज, अपने कपड़े बदलकर, जैसे कि कैसे कपड़े बदला उन्होंने, कैसे वेश पहना, गोपाल का मतलब एक साधारण गाय संभालने वाले बच्चे का, ऐसे वेश अपने पहनकर भगवान ने ब्रज में आके ऐसे विशेष क्रीड़ाएं किए और ऐसे करते रहे, जैसे कि उदाहरण था उन्होंने दावानल को पी लिया। और फिर ऐसे जैसे जैसे समय बीतता गया क्या हुआ, ग्रीष्म नाम ऋतु अभवत, ग्रीष्म ऋतु आ गया। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु। वैसे छह ऋतु है, अगर अभी क्या चल रहा है, अभी शायद वर्षा और हेमंत का बीच चल रहा है वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद कौन सी ऋतु, हर एक छह ऋतु होते हैं वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, छह ऋतुओं के दो दो महीने। अभी वर्षा ऋतु, वर्षा के दो महीने, फिर आएगा शरद, शरद ऋतु बहुत सुंदर है, इसको अंग्रेजी में ऑटम कहते हैं, मतलब ठंड जाड़े के समय ऋतु का पहला जो समय होता है उसको शरद ऋतु कहते हैं, दो महीने का। और उसके बाद हेमंत, हेमंत भी ठंडी का समय है लेकिन थोड़े शुरुआत का, दो महीने नवंबर दिसंबर के करीब। और फिर शिशिर, शिशिर मतलब जाड़ा जब बहुत बढ़ जाता है, ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी, जनवरी फरवरी के समय। उसके बाद में आता है वसंत ऋतु, यह भी बहुत सुंदर ऋतु है। और वसंत ऋतु के बाद आता है ग्रीष्म। इस प्रकार से छह ऋतु हो गए, तो इन छह ऋतुओं में बदलते रहते हैं। तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु की बात आ रही है। और यहां शुकदेव गोस्वामी ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताते हैं, न अति प्रयान शारीर नाम। ये ग्रीष्म ऋतु उन लोगों के लिए बिल्कुल प्रिय नहीं है जिन्होंने शरीर धारण किया है, शरीर नाम मतलब जिनके भी भौतिक देह हैं, सारे प्राणियों के लिए ये ग्रीष्म ऋतु खास करके भारतवर्ष में प्रिय नहीं है। क्यों, कितनी गर्मी होती है, बहुत कष्ट होता है ना गर्मी में। खास करके अभी बाहर सब जगह भारत में हम देखते हैं कि इतनी गर्मी की वजह से बहुत तकलीफ होती है। ब्रज में भी पिछले साल हमने सुना कि गोवर्धन के इलाके में 50 डिग्री तापमान था, 50 डिग्री, और 40 के ऊपर तो साधारण है वहां। 50 डिग्री मतलब हम कल्पना कर सकते हैं, यहां जब 35 डिग्री हो जाती है तो हमें कितना कष्ट होता है, तो 50 डिग्री हो तो कितना कष्ट होगा। तो ग्रीष्म का समय किसी को पसंद नहीं है, इसलिए ये एक घटना समझ लीजिए कि जो छह ऋतु हैं इनके पीछे, पांच ऋतुओं के पीछे लोगों के नाम रखे जाते हैं। वर्षा, वर्षा नाम है ना, लोग रखते हैं ना अपने बेटियों के नाम वर्षा रखते हैं, शरद रखते हैं, हेमंत, शिशिर है ना ऐसे नाम। लेकिन ग्रीष्म कोई रखता है, किसी के लड़के बेटे का नाम ग्रीष्म रखा है, नहीं, शरद रखते हैं, वसंत रखते हैं, शिशिर रखते हैं, लेकिन ग्रीष्म नहीं रखते। क्योंकि अरे ग्रीष्म गर्मी है, बहुत गर्मी कर देगा घर में, नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ न अति प्रयान शरीर नाम की जो ग्रीष्म का ऋतु है किसी को पसंद नहीं है। और फिर आगे देखते हैं कि यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में और वृंदावन के ग्रीष्म ऋतु में क्या फर्क है। हमें अभी अभी कहा कि गोवर्धन में 50 डिग्री तापमान था, बहुत ज्यादा गर्मी है, भक्त लोग वृंदावन में रहना पसंद नहीं करते गर्मी के समय, इतनी गर्मी होती, इतना कष्ट। आज के समय में वृंदावन में जब से 8-9 बजे सुबह बज जाते हैं और 9-10 बजे के बाद में तब से लेकर शाम के 6 बजे तक कोई ब्रज में बाहर नहीं आता, इतनी गर्मी। लेकिन ये एक भौतिक दृष्टिकोण है। तो उस समय ब्रज में क्या अवस्था थी, तो आइए शुकदेव गोस्वामी का वर्णन सुनते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी ब्रज में क्या अवस्था थी। सच वृंदावन गुणेर वसंत इव लक्षितः यत्रास्य भगवान साक्षात् रामेण सह केशवः। सच वृंदावनेर गुणेर, ऐसे हैं वृंदावन के गुण, कैसे, वसंत इव लक्षितः, कि ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन में वसंत के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे, वसंत ऋतु के। कितनी सुंदर बात है, थी ग्रीष्म ऋतु लेकिन लक्षण किसके थे, वसंत ऋतु के। और ये क्यों हो रहा था, यत्र अस्ते भगवान साक्षाद रामेण सह केशव, क्योंकि उस समय वहां पर विद्यमान थे साक्षात भगवान केशव कृष्ण, किसके साथ, रामेण सह, राम मतलब बलराम, कृष्ण और बलराम वृंदावन में विद्यमान थे। इसलिए ये अद्भुत चमत्कार हो गया कि ग्रीष्म ऋतु में भी यहां पर वसंत ऋतु के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि कृष्ण और बलराम जो कि ब्रह्मा जी और शिव जी के भी नियंत्रण करता है, उनकी वजह से वृंदावन कितना सुंदर हो गया ग्रीष्म ऋतु के भी समय। और आगे 3-4 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं कि ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से वसंत के लक्षण प्रकट होने लगे। तो आइए सुनते हैं। अब हमें याद रखना है कि कई बार श्रीमद् भागवत में ऋतु के और तापमान का वर्णन इत्यादि आता है, तो हमें इसे भौतिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये वृंदावन से संबंधित है और ये जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है ये सब कृष्ण की योजना से, उनकी व्यवस्था से हो रहा है। यत्र निर्झर निर्हाद निवृत्त स्वन झिल्लिकम शश्वत्तच्छीकराजेश ध्रुम मंडल मंडितम। वृंदावन में नाना प्रकार के झरने थे, निर्झर वॉटरफॉल, जिनकी आवाजें आती थी निर्हाद। आप कहीं किसी झरने पे गए हैं ना, आपने देखो अगर पानी की आवाज आती है कितना अच्छा लगता है। और हमेशा उस जगह में जहां निर्झर झरने होते हैं वहां पर अवश्य कोई जंगल इत्यादि होंगे, और जंगलों में आपको किस कीड़े की आवाज सुनाई देगी, हमेशा रहता है, आपने सुना है, कभी यहां भी सुनाई देता है, हमेशा रहता है ऐसे, झिल्ली, झिल्ली कहते हैं ना, या संस्कृत में झिल्ली कम कहते हैं, झिल्ली, क्रिकेट, इंग्लिश में उसको क्रिकेट कहते हैं, वो खेल नहीं कीड़ा है ये, तो इसकी आवाज हमेशा रहती करके, आवाज बड़े मन को अशांत करती है, आवाज हमेशा रहती है उसी तरह से। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में जगह जगह ऐसे झरने बह रही थी उस पानी से, और उस पानी के झरने की आवाज की वजह से झिल्लियों की आवाज का दमन हो रहा था, झिल्लियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि ये झरने बह रहे थे, झरझर 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 झरने के बहने से एक मधुर संगीतमय आवाज उत्पन्न हो रहा था। शश्वत तत् शीकर अर्जिस ध्रुम मंडल मंडितम। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पानी के बूंद सब जगह फैल रहे थे, और वहां पास में जितने भी पेड़ इत्यादि पौधे थे उनको वो गीला कर रहा था। और इस प्रकार से ये बहुत सुंदर सारे इन पेड़ों की वजह से और इन निर्झरों की वजह से ये सारा जगह जो है बहुत सुंदर लग रहा था। ये निर्झर ये भी एक ऐश्वर्य है, इसलिए हम देखते हैं कि पहले के जमाने के राजा महाराजा अपने राजवाड़े में राजमहल में अवश्य कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम वॉटरफॉल बनाते थे। जगह जगह हम शहरों में भी देखते हैं, अगर कोई चौक होगा बड़ा तो वहां भी कोई वो ऐसे वॉटरफॉल या कुछ बना देते हैं, फाउंटेन। बम्बई में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है फ्लोरा फाउंटेन, फाउंटेन लगाते थे शहर के बीच में, क्योंकि ये भी एक बहुत सुंदर चीज है, लोगों को सुनना देखना ये बहुत पसंद आता है। देखिए पानी ये कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य समाज के लिए, पानी भी एक ऐश्वर्य है, जहां पानी बहने लगता है वहां सब कुछ सारे संपत्ति आती है, क्योंकि आखिर में पानी से ही कृषि हो सकता है, कृषि से अनाज उत्पन्न हो सकता है, और अनाज से हमारा पेट भर सकता है और आदमी जी सकता है। इसलिए सारे आज तक इतिहास में देखा जाए तो जितने भी सारे बड़े बड़े सिविलाइजेशन, जितने भी जो संस्कृति उत्पन्न हुए हैं वो नदी के तट पे हुए हैं, चाहे वो इजिप्ट में देखिए, चाहे वो यहां भारत में देखिए, चीन में देखिए, सब जगह नदी के पास, क्योंकि नदी के पास में एक सौंदर्य है। पानी हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन आजकल पानी के दुरुपयोग से बहुत तकलीफ हो रही है। और पानी के दुरुपयोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक कारण है पानी के अभाव के लिए, पाप। क्योंकि इतने सारे पाप हो रहे हैं कि आजकल बादल जो है वो वर्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब जगह हम देखते हैं दुष्काल, अकाल पड़ रहा है। लेकिन जहां भगवान की भक्ति होती है तो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वर्षा भी होती है, जितना आवश्यक है उतना। अखबार में हमने 2-4 महीने पहले पढ़ा था, एक व्यक्ति जो कि विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक मामलों का विश्लेषण करते हैं और लेख लिखते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आगे आने वाले समय में जो युद्ध होने वाले हैं देशों के बीच में, वो भूमि के लिए नहीं होने वाले हैं, वो पानी के लिए होने वाले हैं। और हम देख रहे हैं देश के भीतर भी प्रांतों के बीच में झगड़े चल रहे हैं पानी के ऊपर। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी का जो झगड़ा चल रहा है, और बांग्लादेश और भारत के बीच में ब्रह्मपुत्र के बारे में झगड़ा चल रहा है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु और बियास इत्यादि नदियों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। वैसे शुरू हो गया है, अभी और आगे बढ़ता रहेगा। तो पानी का बहुत महत्व होता है, और ब्रज में बहुत पानी, यह है और एक ऐश्वर्य का लक्षण। तो ये निर्झर भी एक सुंदर वातावरण निर्माण कर रहे थे वृंदावन में गर्मी के समय, जबकि हम देखते हैं कि गर्मी में वैसे लोग जगह पानी कम होता है सब जगह, लेकिन वृंदावन में पानी की कोई कमी नहीं थी। और कितनी कमी नहीं थी ये हम आगे भी देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के वर्णन से। सरित सरह प्रसवर्णोमि वायुना कल्लार कंजोत्फल रेणु हारिणा न विद्यते यत्र वनौक संधवो निदाग वहनी अर्क भवोति साद्वले। सरित सरह, सरित मतलब नदियां, सरह मतलब तालाब, प्रस्रव ऊर्मी, उनके जो इतना पानी था कि उनकी लहरें थी, समझ लीजिए पानी कितना हुआ होगा, और इनकी लहरों का स्पर्श जब वायु करता था, वायुना, तो क्या करता था, वहां जो नाना प्रकार के कमल पुष्प थे उनके रेणु को हरण करके वायु ले जाता था। और अलग अलग कमल पुष्पों का वर्णन यहां सुखदेव गोस्वामी करते हैं। कमल, इसके लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, कमल है ना, लोटस। लेकिन कमल कितने तरह के होते हैं, तरह तरह के कमल पुष्प होते हैं, जैसे गुलाब भी कितने तरह के होते हैं। और यहां पर 3 प्रकार के कमलों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन। याद रखिएगा ये सब दिव्य है, यहां के कमल पुष्प भी दिव्य है, ये चिंतामणि धाम है। और ये 3 है कल्हार, कंज, उत्पल। और ऐसे जो कमलों से सुशोभित जो तालाब थे और जो नदियां थीं, उनके ऊपर से वायु बहता था और उनके रेणु को उड़ाकर ले जाता था, और साथ साथ पानी की बूंद भी उड़ाकर ले जाता था। और पानी के बूंद को उड़ा ले जाकर ये रेणु का और पानी के बूंदों की वर्षा सब जगह फैलाता था, स्प्रे सब जगह। और इस प्रकार से सारे ब्रजवासियों को शीतल, एक वर्षा के समान वो बरसाता था। और यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, दवो निदाघ वहनी अर्क, जो सूरज की वजह से, जो दावनल की वजह से जो तकलीफ और गर्मी उत्पन्न होती थी, ये जो पानी का स्प्रे जो है इसको दमन कर देता था। तो हम कल्पना कर सकते हैं ना मन में, कि जगह जगह जाने से वहां स्प्रे होते थे। जब लोग कोई अंदर आते हैं तो ये हम स्प्रे करते हैं, एक स्वागत का तरीका होता है, उनके ऊपर छिड़कते हैं अत्तर इत्यादि। लेकिन यहां अत्तर नहीं, अत्तर और कमल पुष्प के जो सुगंधित जल स्प्रे, ऑटोमेटिक नेचुरल स्प्रे सारे जगह, सब जगह होता था वृंदावन में। देखिए कितने काव्यात्मक ढंग से शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। जितने हम गहराई में श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे उतना रस निर्माण होता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से हर एक शब्द यहाँ स्टडी करना चाहिए, और जितना ज्यादा हम गहराई में जाएंगे उतना आनंद आएगा, उतनी ज्यादा हमें अनुभूति होगी कि वृंदावन धाम में भगवान ने कैसे चमत्कार किया था और वृंदावन धाम वास्तव में है क्या। फिर आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नदियां जो कि पानी से भरी हुई थीं, वो पानी इतना था कि पानी बाढ़ की वजह से वो तट पे आ जाता था और वो जो तट को बिल्कुल गीला कर देता था, और ब्रज में ऐसा कोई स्थान नहीं था जो कि गर्मी के समय भी सूख जाता था। इसलिए गर्मी के समय भी हरी भरी सब जगह वातावरण दिखाई पड़ता था। वैसे कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में प्रार्थना करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। इमे जनपदः स्पृद्धा सुपक्वौषधि वीरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो हि एधन्त तव वीक्षितैः। कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, इन्हें ये सब जनपदा, ये सब गांव हैं, शहर हैं, स्पृद्धा, ये बिल्कुल बहुत अच्छे अवस्था में हैं। क्यों? तब वीक्षितै ही, क्योंकि आपकी दृष्टि इन पे लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो खेत हैं वो प्रचुर मात्रा में अनाज इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं, ये जो पेड़ हैं ये फलों से फूलों से भरे हुए हैं, ये नदियां हैं पानी से भरे हुए हैं, बहते हुए जा रहे हैं, ये जो पहाड़ हैं इनमें से नाना प्रकार के धातु निकल रहे हैं, और जो सागर हैं उनमें से नाना प्रकार के मोती जैसे ऐश्वर्यशाली वस्तु निकल रहे हैं, और ये सब ऐश्वर्य प्रकृति में इसलिए है स्वाभाविक तौर से क्योंकि आपकी दृष्टि इसके ऊपर लगी हुई है। तो प्रकृति हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्रदान कर सकती है अगर केवल हमने भगवान श्री कृष्ण के कृपा दृष्टि को आकृष्ट किया। तो अगर हम सब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे, तो भगवान की कृपा दृष्टि यहाँ होगी, फिर प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है। क्योंकि भगवान कृष्ण की दृष्टि वृंदावन के ऊपर थी, इसलिए वृंदावन में सब कुछ था। और इस आखिरी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी ने एक सरल सेंटेंस में वृंदावन का वर्णन किया। हमेशा प्रभुपाद जी ये सेंटेंस बोला करते थे, वृंदावन इज सच अ नाइस प्लेस। वृंदावन कितना अच्छा जगह है। नाइस मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये स्थान, कितना अच्छा जगह है, जहां जाने से बहुत अच्छा लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्यों वृंदावन इतना अच्छा लगता है।
वनम कुसुमितम श्रीमन नजत चित्रम मृगद्विजम गायन मयूर भ्रमरम कूजत कोकिल सारसम।
सबसे पहली बात कि वृंदावन इतना अच्छा जगह है वो इसलिए कि वनम कुसुमितम श्रीमन, श्रीमन मतलब सुंदर। ये वृंदावन सुंदर क्यों हो गया? कुसुमितम, क्योंकि सब जगह फूल ही फूल है। फूल भगवान ने कितनी सुंदर वस्तु बनाई है। फूल देखिए कितने सुंदर, फूल लगने से कितना अच्छा लगता है कि नहीं? पत्ते और फूल क्या चाहिए सौंदर्य बनाने के लिए? रत्न मोतियों की आवश्यकता नहीं है, बस फूल होंगे तो बस सुंदर है। इसलिए किसी को प्रेम व्यक्त करना होता है तो आज भी ये प्रथा है, फूल देते हैं, है ना? आज भी किसी का सम्मान करना होता है तो हार दे देते हैं, फूलों का माला पहनाते हैं। स्वागत करना हो, किसी का सत्कार करना हो तो फूल बहुत सुंदर है। कितने प्रकार के फूल थे वृंदावन में, नाना प्रकार के फूल, और ये हमेशा प्रफुल्लित अवस्था में रहते थे ये फूल। और क्या था जो कि वृंदावन को बहुत सुंदर जगह, सच अ नाइस प्लेस, सुंदर बनाता था? नदत चित्र मृगद्विजम, नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो आवाजें आती थी पक्षियों से और पशुओं से, कैसे आवाज आती थी? आजकल यहाँ की आवाज जैसे नहीं। यहाँ खास करके कौन से पशुओं की आवाज आती है? रात भर कुत्ते भौंकते रहते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, फिर के 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 वो एक किसी को पकड़ लिए, चार कुत्तों ने एक कुत्ते को, उसको फाड़ के डालते हैं। हमने देखा साक्षात यहाँ पर एक कुत्ते को फाड़ के डाला था दूसरे कुत्तों ने, क्योंकि उसके उनके इलाके में आ गया था कुत्ता। तो शहर के ये आभूषण हैं, शहर के ये आवाजें हैं, पशुओं की आवाज भी ऐसे आते हैं। तो ये है शरीर की परेशानी, ये है शहर की परेशानी। लेकिन वृंदावन में क्या अवस्था थी? मृग और द्विजम, जैसे मृग मतलब हरिण, ऐसे सुंदर और पक्षी जैसे कोयल और मयूर यानी मोर इत्यादि। और किस प्रकार के आवाजें करते थे? गायन मयूर भ्रमरम, गायन मतलब गीत गाते थे वो मयूर। मोर अपने नृत्य और गान के लिए प्रसिद्ध है। जब भी मोर जाता है नृत्य करता है, नाच रे मोरा अम्बैच, क्या है वो, कुछ है ना, ने सुना तो सभी लोग बच्चों को भी सुनाते हैं कि देखो मोर कितने सुंदर ढंग से नाचता है। बचपन में सुनाते हैं, गाना भी याद नहीं है हमको। तो मोर का नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध होता है। और वृंदावन में मोर इतने प्रसन्न होते हैं कि बस नाचते रहते हैं सुंदर, और गीत गाते हैं साथ साथ। कभी कभी कृष्ण भगवान की मोर के साथ नाचते हैं। बरसाना में एक स्थान है मोर कुटी, जहां पर लीला ऐसे हुई कि जहां हम गए थे याद है श्री मंदिर ऊपर, तो वहां पास मोर कुटी है, वहां पर ये लीला हुई थी। एक बार मोर नाच रहे थे तो कृष्ण ने देखा, अरे कितने सुंदर ढंग से नाच रहे हैं, तो कृष्ण भी उनके बीच में जाके नाचने लगे मोर की तरह, और उनसे अच्छा नाचने लगे। तो मोर देखने लगे, अरे ये कृष्ण कितने सुंदर नाच रहा है, तो सब प्रशंसा करने लगे कृष्ण के। और फिर उन्होंने क्या किया, भेंट दिया, गिफ्ट दिया कृष्ण को, अपना पंख निकालकर कृष्ण को भेंट किया। उस दिन से कृष्ण ने मोर पंख लगाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण लीला करते थे मयूरों के संग में। तो मयूरों की बोली, मयूरों के नृत्य बहुत सुंदर थे। और साथ साथ और कौन से थे? भ्रमरम, भ्रमर भौरे, भौरों की गुंजन, गुनगुन गुनगुन गुनगुन, उनकी सुंदर सी आवाज, संगीत में आवाज चलती थी। इसके साथ ये दृश्य उत्पन्न हो रहा था, और कल्पना कीजिए अपने मन में। और फिर कूजत कोकिल सारसम, कूजत मतलब कुकू कुहू कुहू की आवाज, किसकी? कोकिल मतलब कोयल की आवाज, और सारस, सारस भी एक पक्षी होता है, अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं इसको। सारस और कोयलों की सुंदर मधुर गीत। बताया जाता है कि ये कोयल पांच प्रकार के धुनों में, पांच प्रकार के स्वरों में गीत गाया करते थे। इस प्रकार से वृंदावन का सौंदर्य था। अच्छा लगता है ना, उस समय ऐसे वातावरण में रहना अच्छा लगता है कि इस वातावरण, बाहर के वातावरण में? वो है वृंदावन। लेकिन कोई व्यक्ति ये पूछ सकते हैं, अरे ये क्या है वृंदावन, ये क्या है फल फूल, थोड़े झाड़, ये थोड़ी ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य मतलब क्या? ऐश्वर्य मतलब हीरे मोती रत्न पन्ने सोना चांदी महल, ये सब ऐश्वर्य है, ये थोड़ी ऐश्वर्य होता है। वृंदावन और वैकुंठ भगवान के धाम के दो विभाजन है दोनों भगवान का धाम। लेकिन वृंदावन में ये सौंदर्य है जैसे अभी वर्णन हुआ, और वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में सब ऐश्वर्यशाली है, बड़े बड़े महल, हीरे मोती पन्ने सब जगह जगह जगह। तो कई बार लोग सोचते हैं कि वृंदावन में कैसे ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन वृंदावन में भी ऐश्वर्य है, और यही चीज वृंदावन की ऐश्वर्य है। और वृंदावन में भी बहुत सारे हीरे मोती पन्ने वगैरह हैं, लेकिन वो ब्रजवासियों के ध्यान के केंद्र बिंदु नहीं है, क्योंकि ब्रज में ऐश्वर्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वृंदावन में केवल माधुरी को महत्व दिया जाता, मिठास को, प्रेम को, सेवा को महत्व दिया जाता है। जब लक्ष्मी देवी भी आई वहां ब्रज में, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी वैकुंठ से आई थी, वैकुंठ की भावना थी लक्ष्मी देवी की कि मैं महारानी हूं। तो सारे गोपियों ने कहा महारानी महारानी वो सब वैकुंठ में हुआ, यहां नहीं चलेगा ये बात। हाँ, यहाँ पे सब गोपी हैं, सब हम दूध निकालते हैं गाय से और यह हम कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं, यहाँ ऐश्वर्य की भावना नहीं चलती है, आपको यहाँ गोपी बनकर आना है। और लक्ष्मी देवी नहीं कर पाई, वैकुंठ की भावना इतनी प्रबल होती है, ये भी शुद्ध भक्ति है लेकिन ऐश्वर्य से मिश्र भक्ति है। लेकिन यहाँ वृंदावन की भक्ति मधुर, बहुत मिठास, यहाँ ऐश्वर्य की कोई कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति जाए ठाट से वृंदावन में, कोई परवाह नहीं करेगा उस समय के वृंदावन में, लेकिन किसी के पास प्रेम है कृष्ण के प्रति, वाह ये ऐश्वर्य। उसी प्रकार से भक्तों के समाज में भी सच्चा ऐश्वर्य क्या है? सच्चा ऐश्वर्य है भक्त का हृदय। जब भक्त देखते हैं कि दूसरे भक्त के अंदर ये गुण है, कितना नम्र है, कितनी भक्ति है उसके हृदय में, बिल्कुल दूसरे भक्तों के प्रति ईर्ष्या नहीं है, भक्तों के संग में कितने अच्छे ढंग से रहता है, भक्तों के जो मूल्य है उसको कितने अच्छे ढंग से समझता है, तब दूसरे भक्त समझते हैं कि ये सच्चा भक्त है, इसके ऊपर सचमुच भगवान की कृपा है, इसको सच्चा ऐश्वर्य मिला है। कई बार ऐसे भी हो सकता है, कोई लोग भक्ति करने आते हैं, कोई भौतिक इच्छा लेकर आते हैं, अगर भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो और उनकी मनोवांछाएं पूर्ण न हो रही हो तो फिर कहते हैं क्या 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 फायदा है इससे, हम यहाँ हमारी इस इच्छा पूरी करने के लिए आए और इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम नहीं आएंगे अब मंदिर में। ऐसे तो कई बार भक्तों के बारे सुनने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर में आते हैं हम क्यों? भक्ति के लिए, कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। और अगर भौतिक इच्छा है भी तो कोई बात नहीं, भक्ति करते रहने चाहिए, भौतिक इच्छा पूरी हो या न हो भगवान हमें भक्ति देंगे, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य धन हमें भगवान प्रदान करेंगे, इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। और कभी भी हमें कोई भौतिक अपेक्षा मंदिर से नहीं रखनी चाहिए कि हमें मंदिर में आके फिर हमारा कैसे हो गया, हमारा नुकसान हुआ या हमारे ये कुछ हुआ, ये दुर्घटना हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ, वैसे जो कपाल में लिखा है वो तो होकर ही रहना है। लेकिन जब मंदिर में आए, मंदिर में आकर हमें जो मिलता है उसका मूल्य हमें समझना चाहिए। जितना हम इस अनमोल रत्न के मूल्य को समझते हैं कि हमें जो मिला है उतनी कृपा भगवान बरसाते हैं हमारे ऊपर। अगर भगवान देखेंगे कि कोई भक्त देखता है कि मैंने इसको अनमोल रत्न दिया है लेकिन इसकी कीमत ही नहीं समझ रहा है, भक्ति की कीमत नहीं समझ रहा, और मैंने इसको इतने अनमोल रत्न दिए हैं भक्तों के रूप में, इनकी कीमत नहीं समझ रहा है। हाँ, रत्न दो प्रकार के होते हैं, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब रत्न, जो डायमंड होता है ना, आप कोई डायमंड बिजनेस में तो नहीं है ना? हाँ, आप सब हैं डायमंड रत्न, वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यवसाय में तो नहीं है ना? यो जो डायमंड होता है, रत्न होता है, वो जब अपने खान से निकाला जाता है तो उसको पॉलिश करना पड़ता है, और इसके लिए बहुत सीखना पड़ता है। कई लोग सूरत इत्यादि जगह में जाते हैं सीखने के लिए कि रत्न को कैसे पॉलिश किया जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है, पहचाना जाता है, ये कला होती है, कई महीनों की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और फिर उसको पॉलिश करके जब पता चलता है कि हाँ ये रत्न है। लेकिन इस जगह में रत्न भरे पड़े हैं, इसको पहचानने के लिए भी दृष्टि चाहिए, वो भी रत्न है ये भी रत्न है, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड, जिसको पॉलिश किया हुआ है और नहीं किया हुआ है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे रत्नों के समान होते हैं जिनको पॉलिश किया हुआ है, चमकते हैं भक्ति से। लेकिन दूसरे भी भक्त होते हैं जो इतने शुद्ध नहीं है, जिनके हृदय में भौतिक कामनाएं वासनाएं हैं, दोष हैं, वो भी रत्न है लेकिन थोड़ी बहुत अभी मिट्टी है ऊपर, उसको साफ करना है, उसको पॉलिश करना है। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी है कुछ है तो ये रत्न नहीं है, रत्न है। तो अगर हम इसको ठुकरा देंगे, इसकी कीमत नहीं समझेंगे, यार ये तो रत्न कितना मिट्टी है, चलो फेंक दो इसको, इसकी कोई कीमत नहीं है, तो हमारा कितना नुकसान होगा, उसी प्रकार से भक्तों के समाज में रहते हुए भी अगर हमने भक्तों के अंदर दोष देखे, भक्तों के दुर्गुण दिखाई पड़े हमें, तो वह ऐसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति उस डायमंड को, रत्न को देखता है कि ये मिट्टी है, क्या है, इसको फेंक दो। नहीं, भक्त चाहे नए हो पुराने हो, भक्त चाहे आगे बढ़े हुए हो या नौसुखियां हो, भक्तों के अंदर कोई दोष हो या न हो, सब रत्न है। और भगवान ने असीम कृपा हमारे ऊपर करके ऐसे रत्नों का संग हमें दिया है, इसलिए हमें भक्तों के संग में बहुत सावधानी से, प्रेम से रहना चाहिए। जब भगवान देखेंगे कि हम प्रेम से रहते हैं आपस में, तब भगवान समझेंगे कि अब इस व्यक्ति का हृदय तैयार है, अब मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और विराजेंगे, तब वास्तव में हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा। तो वृंदावन कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे हृदय को हमें वृंदावन बनाना है। वृंदावन में रहते हुए भी हमारा हृदय नरक हो सकता है, और नरक में रहते हुए भी हमारा हृदय वृंदावन हो सकता है। ये चेतना की बात है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि केवल ऐश्वर्य को हमें हर हीरे मोते रत्न इत्यादि नहीं समझना चाहिए, वृंदावन का भी ऐश्वर्य है। इस संदर्भ में एक लीला है, चैतन्य लीला। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में निवास करते थे, तो जगन्नाथ जी का दर्शन हर रोज देखा करते थे, और जो भी जगन्नाथ जी के सुंदर उत्सव होते थे उनमें भी अपने भक्तों के संग में भाग लिया करते थे। तो एक ऐसे उत्सव आता है जिसको हेरा पंचमी कहते हैं। विस्तार में इस लीला, इस उत्सव का वर्णन कभी और करेंगे, लेकिन संक्षेप में इसका इतिहास बताया जाए तो ऐसा है, आप सब जानते हैं कि रथ यात्रा का महत्व क्या है। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, बराबर है। तो गुंडीचा मंदिर कौन से स्थान का प्रतीक है और जगन्नाथ मंदिर कौन से स्थान का? गुंडीचा मंदिर वृंदावन के बराबर है और जगन्नाथ मंदिर द्वारका या कुरुक्षेत्र के बराबर है, द्वारका का भाव, क्योंकि द्वारका में भी ऐश्वर्य की भावना है। 16,108 महल, इतने सारे ऐश्वर्य। जब हम कृष्ण लीला, जब द्वारका लीला तक पहुंचेंगे तब विस्तार में ये चर्चा करेंगे। तो द्वारका में ऐश्वर्य ज्यादा है वृंदावन के हिसाब से। तो जगन्नाथ जी जब जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, इसका मतलब है कि वो द्वारका का छोड़कर वृंदावन जाना चाहते हैं। द्वारका के ऐश्वर्य को त्याग कर वो वृंदावन के माधुरी को स्वीकार करना चाहते हैं। वृंदावन में कौन है? राधा रानी है। द्वारका में कौन है? सब महिषियां हैं, रानियां हैं, जो कि लक्ष्मी देवी हैं। तो ऐसे होता है कि जब जगन्नाथ जी छोड़ने ही वाले होते हैं जगन्नाथ मंदिर को, उस समय लक्ष्मी देवी उनको रोकती हैं, और लक्ष्मी देवी रोक को कहते हैं, मनाते हैं, कहते हैं हम एक दिन में आ जाएंगे, लौट के आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। लक्ष्मी देवी को मनाते हैं, लक्ष्मी देवी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। लक्ष्मी देवी ये समझ नहीं पाती हैं कि मेरे घर में इतने ऐश्वर्य को त्याग कर मेरे पति वहां पे वृंदावन में फूल फलों के बीच में क्यों जा रहे हैं, जब यहां मैं सब कुछ दे सकती हूं, हीरे मोती पन्ने सब हैं, इतना ऐश्वर्य है, वहां पे उद्यानों का ऐश्वर्य लेने मेरे पति जा रहे हैं। तो फिर लक्ष्मी देवी के जो दासी हैं वो जगन्नाथ जी के दासों को पकड़ के आते हैं और बहुत पिटाई करते हैं उनके। ये उत्सव मनाया जाता है, चैतन्य महाप्रभु उनके साथ रहते हैं, देखते थे ये उत्सव, बहुत मारते हैं उनको। सारे माता जी लोग मिलकर उनको मारते हैं जो लक्ष्मी के सेविकाएं होती हैं, और फिर उनको बांध देते हैं, बांधकर लक्ष्मी देवी के सामने ले आते हैं, और फिर लक्ष्मी देवी उनको डांटती हैं कि देखो तुम्हारे स्वामी कैसे हैं, यहां के ऐश्वर्य को छोड़कर वहां चले गए। और फिर उनकी सेविकाएं और उनको मारते थे, जगन्नाथ के सेवकों को चोर के बराबर उनको ट्रीट करते थे, और फिर उस सेवक कहते थे नहीं नहीं कल आपको हमारे स्वामी को आपके पास अवश्य लेके आएंगे। फिर लक्ष्मी देवी कहते ठीक है चलो अभी ले जाओ इनको। तो ये छोटी सी लीला होती है। तो इस लीला के समय एक बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में। श्रीवास ठाकुर वैसे पंचतत्व में से एक हैं, वो नारद मुनि के अवतार हैं। नारायण का भजन हमेशा करते हैं, वैकुंठ भाव में है नारद मुनि, लेकिन अभी चैतन्य लीला में शामिल हुए हैं श्रीवास ठाकुर के रूप में। उधर स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो तो बिल्कुल वृंदावन के भाव में है, ब्रज भाव में है, वो तो केवल शुद्ध भक्ति जानते हैं, ऐश्वर्य कुछ नहीं जानते। तो जब ये हेरा पंचमी का उत्सव हो रहा था तो उस समय श्रीवास ठाकुर मजाक उड़ाने लगे स्वरूप दामोदर का। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनते हैं ये सुंदर वर्णन और फिर हमें पता चलेगा कि वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है और वैकुंठ का ऐश्वर्य क्या है। क्योंकि श्रीवास ठाकुर ऐश्वर्यशाली भजन की क्या रूप उन्होंने नारद मुनि के रूप में लिया था, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं। श्रीवास हसिया कहे सुनो दामोदर आमर लक्ष्मी रे देख संपत्ति विस्तर। श्रीवास ठाकुर ने हंसकर कहा कि अरे दामोदर जरा सुनो, देखो मेरे लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य उसकी संपत्ति कितनी है, देखो तो सही। वृंदावन संपद देखो पुष्प किश लय गिरी धातु शिखी पिछ गुंज फल मय। कहा मेरे लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य संपत्ति और कहा तुम्हारे वृंदावन की संपत्ति। तुम्हारे वृंदावन में है क्या, क्या है? देखो वृंदावन का संपद है पुष्प किशल, पुष्प थोड़े बहुत फूल ट्विग्स, और क्या है गिरी धातु, थोड़े धातु जो पहाड़ से लाए और तुम्हारे कृष्ण भगवान वो अपने इसमें कपाल में लगाते हैं, उसको थोड़ा अंजन के रूप में लगाते हैं। शिखी पिछा मोर पंख गुंज फल, ये सब तुम्हारे वृंदावन का ऐश्वर्य है। ये कोई ऐश्वर्य है क्या? वृंदावन देखी बारे गेला जगन्नाथ सुनी लक्ष्मी देवी मन हैल अशोयथ। जब जगन्नाथ वृंदावन को देखने जाते हैं तो उस समय लक्ष्मी देवी को क्या होता है, मन में बड़ी ईर्ष्या होने लगती है कि मेरे भगवान मुझे छोड़कर वैकुंठ को छोड़कर वृंदावन जा रहे हैं। तो वो लक्ष्मी देवी सोचने लगती हैं, क्या सोचती है लक्ष्मी देवी, तो संपत्ति छाड़ी केनो गेला वृंदावन तारे हास्य कोरी थी लक्ष्मी कोरिला साजन। लक्ष्मी देवी सोचने लगती है मुझे छोड़कर इतना ऐश्वर्य छोड़कर मेरे स्वामी वैकुंठ क्यों गए, वृंदावन क्यों गए, उनका मजाक उड़ाने के लिए अभी मैं तरकीब सोचती हूँ, मेरे पति को ठीक सबक सिखाती हूँ। और इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर आगे बोलने लगे, तोमर ठाकुर देखो एतो संपत्ति छाड़ी पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। तो जगन्नाथ जी के जो सेवकों को लक्ष्मी देवी की सेविकाएं बोल रही हैं, तुम्हारे जगन्नाथ जी ने हमारी लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों किया और इतना सारे ऐश्वर्य त्याग करके केवल फल फूल के ऐश्वर्य को लेने के लिए गए, वो भी राधा रानी के बगीचे में। यही कर्म कौरे कहा विदग्ध शिरोमणि लक्ष्मी रग्रेते निज प्रभु देह आनी। तुम्हारे जो स्वामी हैं हर कार्य में इतने निपुण हैं, लेकिन इतना होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया, अभी जाओ लेकर आओ तुम्हारे स्वामी को हमारे स्वामिनी के सामने। ऐतो बोली महालक्ष्मी सब दासी गणे कोटि वस्त्रे बांधी आने प्रभु निज गणे। इस प्रकार से उन सबको बांधकर लक्ष्मी देवी के सामने लेकर आए। लक्ष्मी न चरण आने कर प्रणति धन दंड लोय आर कर मिनती। जब सेविकाओं ने इन सब सेवकों को जगन्नाथ जी के सेवकों को लक्ष्मी देवी के सामने ले आए तो उनको दंड दिया गया और उनको सामने सिर झुकाना पड़ा। और फिर सारे सेविकाओं ने लकड़ी लेके रथ को मारना शुरू किया, जगन्नाथ जी के रथ को, और साथ साथ जगन्नाथ जी के सेवकों को भी बहुत पीटा। और फिर बाद में जगन्नाथ जी के सेवकों ने क्षमा चाही और कहा कि हम अवश्य जगन्नाथ जी को लेकर आएंगे। इस समय श्रीवास ठाकुर कहते हैं, तौबे शांत होना लक्ष्मी जाए निज घर, आमर लक्ष्मी संपद वाक्य अगोचर। इस प्रकार से लक्ष्मी देवी शांत हो गईं और अपने घर में चली गईं। तो देखो मेरे लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है, वर्णन के बाहर है लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य। और तुम्हारे वृंदावन में क्या चलता है? दुग्ध ओति दधि मथे तुमार गोपी गणे, आमर ठाकुरानी वैश्य रत्न सिंहासने। तुम्हारे वृंदावन में गोपी क्या करते हैं? दूध उबालते हैं, फिर दूध का मंथन करके उसको दही बनाते हैं। लेकिन हमारी जो स्वामिनी है वो क्या करती है? रत्न सिंहासन पर बैठी है। देखो हमारा वैकुंठ, देखो तुम्हारा वृंदावन। नारद प्रकृति श्रीवास कौरे परिहास, सुनी हासे महाप्रभु व्यत निज दास। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के भाव का आनंद ले रहे थे और उपहास कर रहे थे। तो ये देखकर, इनको सुनकर चैतन्य महाप्रभु के जो सारे भक्त हैं वो हंसने लगे छुप छुप के। प्रभु कहे श्रीवास तुमाते नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तुमाते ईश्वर प्रभाव। फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे हंसकर, अरे मेरे प्रिय श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नारद मुनि की तरह है। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का प्रभाव तुम्हारे ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहा है, हम देख रहे हैं। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने इहो शुद्ध प्रेम भाषी। और यह हमारे जो स्वरूप दामोदर हैं वो तो शुद्ध ब्रजवासी है, वो तो शुद्ध प्रेमी है कृष्ण के। ऐश्वर्य न जाने, इनको ऐश्वर्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इहो शुद्ध प्रेम भाषी, ये केवल कृष्ण के शुद्ध प्रेमी है। तुम्हारे वैकुंठ के ऐश्वर्य के बारे में इनको कहां मालूम होगा कुछ। स्वरूप कहे श्रीवास सुन, स्वरूप कहे श्रीवास सुन सावधाने, वृंदावन संपत तुम्हार नहीं पड़े मने। फिर स्वरूप कहे, स्वरूप दामोदर बोलने लगे, श्रीवास सुनो सावधाने, सावधानी से सुनो मेरी बात। वृंदावन संपत तुम्हार नहीं पड़े मने, क्या वृंदावन का संपत तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है? तुम्हें याद नहीं आ रहा है क्या? ध्यान से सुनो, वृंदावने सहज का ये संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। वृंदावन का स्वाभाविक जो ऐश्वर्य है वो एक सागर के बराबर है, और द्वारका वैकुंठ की संपत्ति तार एक बिंदु, एक छोटे बिंदु के बराबर है, कुछ भी नहीं वृंदावन के ऐश्वर्य के सामने। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम। परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और जिस तरह से कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है उसी तरह से उनका धाम भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है। और जहां ये षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण निवास करते हैं वो अपने सारे षड ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं, इसलिए वृंदावन धाम भी इस सारे भगवान के षड ऐश्वर्यों को प्रकट कराती है। केवल वृंदावन में ही वास्तव में भगवान के षड ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में प्रकट होते हैं, वैकुंठ में भी पूरी तरह से नहीं होते, केवल वृंदावन में प्रकट होते हैं। चिंतामणिमय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गण दासी चरण भूषण। वृंदावन धाम किस चीज से बना हुआ है? चिंतामणिमय भूमि, वहां की भूमि चिंतामणि की है। चिंतामणि गण दासी चरण भूषण, और वहां के जो गोपीगण हैं उनके जो चरणों के नूपुर है वो भी चिंतामणि है। कल्प वृक्ष लतार यहां सहज कवन, पुष्प फल विना केह नामागे अन्य धन। वृंदावन ये स्वाभाविक वन है कल्प वृक्षों का, कल्प लताओं का, और यहाँ पे जो भी पुष्प फल इत्यादि है उनके अलावा वृंदावन के निवासियों को और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी ये कल्प वृक्ष है, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए गोलोक वृंदावन का वर्णन चल रहा है, अनंत काम धेनु तहां फिरे वने वने, दुग्ध मात्र देना केहो ना मागे अन्य धने। यहां वृंदावन में अनंत काम धेनु गाय हैं, जो कि वनों में इधर उधर फिरते हैं, घूमते हैं, वन से वन, दूसरे वन से दूसरे तीसरे वन में घूमते फिरते हैं। दुग्ध मात्र देन, केवल दूध देते हैं ये, और इसके अलावा वहां के लोग ब्रजवासी कुछ और चाहते ही नहीं है, केवल वहां की गायों, कामधेनु गायों का दूध और वहां के फल पुष्प इत्यादि, इससे वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। सहज लोकेर कथा यहाँ दिव्य गीत, सहज गमन कोरे जाय चे नित्य प्रतीत। वृंदावन में जो लोगों की बोली है वो गाना है, संगीत है, और जो लोगों का चलना है वो नृत्य है। हम रोज गाते हैं, याद है ना, सर्वत्र जल यहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वादे यहाँ मूर्तिमान। वृंदावन का जल कैसा है, अमृत है, और यहाँ पर ब्रह्म ज्योति भी विद्यमान है। लक्ष्मी जी ने गुण यहाँ लक्ष्मी रस माज, कृष्ण वंशी कोरे यहाँ प्रिय सखी काया। यहाँ पे जो भी गोपियां हैं ये भी लक्ष्मी देवी हैं, लेकिन इन लक्ष्मियों के पास में जो ऐश्वर्य है वो वैकुंठ की लक्ष्मी देवी से कहीं ज्यादा है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान के साथी कौन है, उनकी प्रिय वंशी, जिसको हमेशा कृष्ण भगवान बजाते रहते हैं। और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रह्म संहिता का श्लोक बोलते हैं, जो हम हर रोज गाते हैं सुबह को, कौन सा है वो, हम साथ में बोलेंगे, श्रिय कांता कांता परम पुरुष कल्प करवो, द्रुमा भूमि चिंता मणि गण मई तोयम अमृतम, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंद स्रोति परमपि तदा स्वादमपि च, यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिर्यश्च सुमहान, निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः, वजेश्वेतद्वीपं तहहं इह गोलोकमितियं, विदन्तस्ते क्षितिस्थिति विरलचारः कतिपये। श्रीयः कांतः, वहां पे जो सारे कांत है, जो सारे गोपियां हैं वो कौन है, वो लक्ष्मी देवी हैं, और वहां पे प्रेमी पुरुष कौन है, कृष्ण है, कांत परम पुरुष है। और द्रुमा, वहां पे जो सारे पेड़ हैं वो क्या है, कल्पतरु, और वहां की भूमि क्या है, चिंतामणि, और वहां का जो पानी है तोयम अमृतम, पानी जो है वो अमृत के समान है। कथा, वहां की जो बोली गानम गीत के समान है, और वहां का जो गमनम चाल है नाट्यम, वो तो नृत्य के समान है। वंशी प्रिया सखी, भगवान की प्रिया जो सखी है वो वंशी है। और इस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी आगे वर्णन करने लगे। बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी कहते हैं,
चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनानाम, श्रृंगार पुष्प तरवस्तरव सुराणाम, वृंदावने व्रजधनम ननु कामधेनु, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूति।
वृंदावन के गोपियों के चरणों में जो नूपुर है वो चिंतामणियों से बना हुआ है, और उनका जो श्रृंगार है वहां के जो कल्प वृक्ष से फूल है उनसे वो अपने आप को सुशोभित करते हैं। वृंदावन व्रज धामम ननु काम धेनु, वहां बहुत सारे काम धेनु है। गो धनम व्रज धनम, वृंदावन का धन क्या है? गाय। ये सारे काम धेनु गाय, जिनसे कि वृंदावन सुशोभित होता है और उसकी वजह से वृंदानी चेती सुख सिंधु, इसलिए वृंदावन आनंद का सागर हो जाता है। अहो विभूति ही, देखो आहा, देखो वृंदावन का ऐश्वर्य कितना है, बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं। और इस प्रकार से जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वृंदावन के ऐश्वर्य का वर्णन किया तो फिर श्रीवास ठाकुर नाचने लगे आनंद से। वास्तव में श्रीवास ठाकुर केवल उकसाना चाहते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी को वृंदावन के ऐश्वर्य को बताने के लिए। और जब सुना स्वरूप दामोदर के मुखारविंद से वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में तो श्रीवास ठाकुर प्रेमावेश में आ गए, नाचने लगे, अपने बगलों को थपथपाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे आनंद से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हालांकि यहां हम पढ़ रहे हैं कि वृंदावन में केवल नदियां हैं, फूल हैं, घास है, मोर है, कोयल है, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि बस इतना ही है, जंगल है वहां केवल। नहीं, ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, युक्त है। षड गोस्वामी अष्टक श्रीनिवास आचार्य विरचित हम गाते हैं ना कभी कभी भजन। कूजित कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा खुले, नाना रत्न निबद्ध मूल विठप, श्रीयुक्त वृंदावने, राधा कृष्ण अहर्निशं प्रभजतो, जीवार्थदौ यो मुदा, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। इसमें श्रीनिवास आचार्य वृंदावन का वर्णन करते हैं ठीक इसी तरह से जैसे कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने किया है। कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा कुले। वो कहते हैं कि कूजत जो मधुर गीत है, किसका? कूजत कोकिल, कोयलों का, साथ साथ में कौन है? हंस सारस भरे हुए हैं, मोर भी, अकीर्णे, अकीर्ण मतलब भरे हुए हैं पक्षियों से वृंदावन। और इतना ही नहीं, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप, विटप मतलब पेड़, मूल मतलब उनकी जड़ें, हर एक वृक्ष यहाँ कल्प वृक्ष है जिसके जड़ों में नाना प्रकार के रत्न हैं। ऐसे कोई वृक्ष देखा है आपने जिसमें कि हर एक जड़ के नीचे एक अनमोल रत्न है? यह है वृंदावन। इसलिए यहां श्रीनिवास आचार्य कहते हैं श्री युक्त वृंदावने, इसलिए वृंदावन श्री से ऐश्वर्य से युक्त है, लेकिन ये ऐश्वर्य हम नहीं देख सकते हैं। और ऐसे वृंदावन में षड गोस्वामी रहते थे। क्या करते थे वहां रहकर? वहां पर राधा कृष्ण अहर निशम प्रभजतो, प्रभजतो भजन करते थे, प्रकृष्ट रूपेण भजतो, बहुत तीव्रता से भजन करते थे, अहर निशम दिन रात राधा कृष्ण के, जीव अर्थ दो यौ मुदा, जीवों के लिए उनके जो जीवन का उद्देश्य है वो भक्ति कृष्ण प्रेम वो प्रदान करने के लिए, इसलिए मैं षड गोस्वामियों को प्रणाम करता हूं, ऐसे श्रीनिवास आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन का जो वन है वो इतना अच्छे ढंग से सुशोभित है। तो खैर, इस प्रकार से वर्णन हम आज यहाँ समाप्त करते हैं प्रश्नोत्तर के लिए। और कल सुबह हम चर्चा करेंगे कि कौन सी क्रीड़ाएं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने किए और किस असुर का वध बलराम जी ने क्रीड़ा के समय किया। और उसके बाद में रविवार को दोपहर को भी ये कथा हम चालू रखेंगे और देखेंगे कि दूसरी बार एक दावानल हो गया वृंदावन में और उस दावानल को कैसे कृष्ण भगवान ने पी लिया। और उसका नाम था मुंजटवी। मुंजारण्य में एक भीषण आग हुई, तो वो चर्चा रविवार को दोपहर को करेंगे। और इस प्रकार से आगे वाले आने वाले हफ्ते में अलग अलग जो लीलाएं हैं जो भगवान ने किए उनके पौगंड वय में उनकी चर्चा हम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री कृष्ण लीला की जय। आपके कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?